शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा बाल्यकाल से ही साकार मम्मा बाबा की पालना मिली, या यूं कहें बाबा की गोद में ही आपका जन्म हुआ है। क्योंकि दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं और मम्मा बाबा मुंबई में जाया करते थे, तो दीदी का यह सौभाग्य रहा। फिर तो दीदी लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते रहे और फिर 1969 में जब आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी की एग्जाम दी और 69 में ही हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए जनवरी में, और आप समर के दिनों में अप्रैल मई में अपनी एग्जाम पूरी करके मधुबन में पहुंचे और जो सबसे पहली ट्रेनिंग चली कन्याओं को राजयोगा टीचर बनाने की, वो ट्रेनिंग आपने की, राजयोगा टीचर के रूप में तैयार हुए और दादियों ने बाबा ने आपको विविध स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर आपने बाबा का नाम बाला किया, बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। तो 69 से 76 तक आप बाबा के सेवा में अलग अलग स्थानों पर उपस्थित रहे और 76 में जब आप मधुबन में आए, आते तो हर वर्ष थे लेकिन जब 76 में आए तो एक सुनहरा अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा था, और वो सुनहरा अवसर था दादियों ने आपके सामने रखा। हो गई बहुत सेवा स्थानों पर रह के, अब मधुबन निवासी बन जाओ। सबको रहता है ना ये संकल्प मधुबन निवासी बनने का। दीदी को सामने से ऑफर मिला, दीदी की व्यक्तिगत जो टैलेंट है उसके आधार से दादियों ने आपको मधुबन निवासी बनने का सुंदर अवसर दिया और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तब से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप अपनी देश विदेश में सेवाएं देते हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन पांडवन भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं और इसके साथ साथ विदेशी भाई बहने जब आते उनके प्रोग्राम्स भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं और आप इंटरप्रेटर भी हैं। बाबा की मुरली जब डायमंड हॉल में चलती है तो दीदी डायमंड हॉल में दिखती नहीं है। कईयों को प्रश्न होता है, दीदी आप मुरली में नहीं आते हैं क्या? लेकिन दीदी मुरली में आते जरूर हैं, लेकिन हॉल में नहीं बैठकर ट्रांसलेशन केबिन में बैठे रहते हैं जहां पर डायरेक्ट मुरली ट्रांसलेशन करते हैं, जिसको सुनकर फिर अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है और सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली का लाभ लेते हैं। आपने पूरे विश्व भर में पांचों महाद्वीपों में 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके बाबा का नाम जन जन तक, संदेश जन जन तक पहुंचाया है और परमात्मा के प्यार में अनेक आत्माओं को फिदा भी किया है। बाबा ने आपको अनेक वरदानों से श्रृंगारा है, जिसमें से दो का मैं वर्णन करूंगी। एक कि विद्या की देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा विराजमान रहेगी और दूसरा आप हर की पौड़ी की गंगा हैं। दादियों से, बाबा से, बाल्यकाल से जो पालना ली है, जो मर्यादाएं सीखी है, वो सब अब रिटर्न आप करते हैं। मधुबन बेहद धरनी में जब भी कोई आते हैं, वो दादियों वाली पालना आप सबको देते हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी बहुत ही सहजता से सबसे मिलते हैं, तो सबको लगता है दीदी तो हमारी अपनी है। तो इतने ओहदों को संभालते हुए भी हम सदा देखते हैं कि आपके जीवन में सरलता, मधुरता और सहनशीलता की ये त्रिवेणी नदी सदा ही बहती रहती है। तो आज ऐसी दीदी से हम अपना भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को बहुत अच्छी से समझेंगे। ये तो लक्ष्य हमारा संपन्नता की ओर बढ़ना है, पाप समान बनना है, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो आज हमने दीदी को कहा है परिपक्व अवस्था, इस पर प्रकाश डालते हुए भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे आदरणीय दीदी जी। लेकिन उससे पहले आपका भी परिचय मैं दीदी को दे दूं। आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, जो 1 से 5 वर्ष के बाबा के बच्चे हैं, हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5 वर्ष के बाबा के बच्चे, आपका बहुत स्वागत है। जो 5 से 10 वर्ष के बच्चे हैं बाबा के, बहुत स्वागत है आपका भी। 10 से 15 वर्ष के, बहुत वेलकम आपका भी। 15 से 20 आपका भी स्वागत, और जो 20 से ऊपर हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और इस ग्रुप में जो विशेष राज्यों का टीचर बहनें आई हैं, वे हाथ खड़ा करेंगे। काफी सारी बहनें आई हैं, तो सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चंद्रकला दीदी का भी बहुत स्वागत है, जो इतना बड़ा ग्रुप तैयार करके लाए हैं। तो अभी हम सुनते हैं दीदी जी से।
ओम शांति। बाबा के घर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली बजे, अपने लिए। पांडव भवन में भट्टी करने की आश तो सबकी रहती है, लेकिन थोड़ों को ही मौका मिलता है, और आप उन थोड़ों में से भी थोड़े हो जो इस बार भट्टी में आए हैं। ये भी आपको लॉटरी लग गई, क्योंकि एक ग्रुप ने लास्ट मिनट मना किया तो आपको तैयार किया। नहीं ऐसे चंद्रकला में, नहीं नहीं कटक, कटक का ग्रुप था, तो उन्होंने कहा ओडिशा से आना बड़ा मुश्किल है, तो फिर आपसे पूछा गया तो कहा कि हाँ हम तो जयपुर के जल्दी आ जाएंगे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी फोन आया, सुना कि एक बस आ रही है आपकी। हाँ अभी अभी बताया कि अभी ऊपर नीचे से निकली है बस। और उसमें कितने हैं? अच्छा अच्छा आप वहाँ से अहमदाबाद जयपुर से ही बस आई? अच्छा अच्छा रात को 12 बजे पहुँचे, हाँ इसलिए 12 बजे मना करते ऊपर आने लिए। चलो पहुँच जाएंगे। और देखो कैसा अच्छा मौका मिला है, जो बाबा के दिन ही आप की भट्टी शुरू हो रही है। तो वैसे तो जो भी भट्टी के दिनों में बाबा का प्रोग्राम होता है, तो उन भाई बहनों को हम नीचे नहीं भेजते हैं, क्योंकि नीचे भी बहुत भीड़ हो जाती है। अभी दिल्ली आया है तो आप सोचिए कितने आ गए होंगे, पहुंच गए खूब। उसके पहले कौन सा था, महाराष्ट्र था या वो भी इतने सारे आ गए थे। उसके पहले गुजरात था, वो भी इतने आ गए थे। कितना भी मना करो भाई, इतने मत आओ, इतने मत आओ, तो भी कहाँ रुकते हैं। आपका भी कितना बड़ा ग्रुप है,
180।
अच्छा, तो भले पधारे बाप के घर में सो आपके घर में। तो प्यारे बाप दादा, सब दादियाँ, सब वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में पधारने का, फिर से भले पधारे। तो बहुत सुंदर विषय आपकी भट्ठी का रखा गया है, योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। समय को, समय की समीपता को देखते हुए अब तो बस सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अब वापस घर जाना है। जिस घर से हम सब पधारे थे इस सृष्टि मंच पर, अब वापस घर जाने का समय आ गया है। इस सृष्टि मंच पर हमने जो भी पाठ बजाया, ड्रामा में जो भी हमारा पाठ था वो बजाकर अब पूरा हो रहा है। अब घर जाना है। हमारी दीदी मनमोहिनी जी का तो यही स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी के सामने कोई भी बात आती थी, समस्या ले आते थे, तो दीदी सुनती तो थी, लेकिन दीदी फिर यही कह देती थी, अभी छोड़ो इन सब बातों को, घर जाना है, घर जाना है। क्योंकि छोटी 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 बातों में अगर हम अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति देते हैं, तो आप सोचिए ये संगम युगी जो बाकी जीवन है वो कितना व्यर्थ जा रहा है। जबकि संगम युग का एक एक क्षण, एक एक पल कितना कीमती है। सब कुछ इसी संगम में ही मिलता है। अभी ही बाबा ने हम बच्चों को सारे कल्प की स्मृति दिलाई है। परम धाम में होंगे तो वहां तो कुछ भी पता नहीं, भले आत्मा मूल स्वभाव में स्थित होगी, जो आत्मा के मूल गुण हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति आदि ज्ञान, ये सब है, लेकिन परम धाम में तो आत्मा कैसे होगी, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था कहें तो भी गलत नहीं होगा। जैसे बीज अपनी सुषुप्त अवस्था में होता है, जब तक उसको रोपो नहीं, आप उसको बीज को खेत में न डालो, तब तक तो वो अंकुरित कैसे होगा। तो वो सुषुप्त अवस्था आत्मा की परम धाम में है, जहाँ परम शांति है। लेकिन उस परम शांति का भी अनुभव वहां नहीं होगा, वो तो परम शांति है ही है। तो अनुभव तब होगा जब इस सृष्टि मंच पर आएंगे, उस परम शांति का भी। जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सोया हो, अब इतनी गहरी उसकी नींद है जो उसको पता थोड़ी है कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूं, बस वो तो सोया हुआ है। लेकिन जब जागता है तब कहेगा, हाँ मैंने कितनी अच्छी नींद की, बहुत अच्छी नींद की, फ्रेश हो गया। तो बहुत अच्छी नींद की, ये जब गहरी नींद में है तब थोड़ी पता चलता है, पता चलता है मैं बहुत अच्छी नींद कर रहा हूँ। हाँ कहाँ कहेंगे, हाँ मुझे नींद आ रही है ऐसे कहेंगे, पर जब गहरी नींद आ गई तो फिर तो जैसे कई संसार से ही गए तो ही पता नहीं चलेगा। तो ऐसी गहरी नींद होती है। इसलिए बाबा कहते परम धाम में तो कुछ भी अनुभव नहीं है, हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं तो भी पता थोड़ी है। हाँ, जब सृष्टि मंच पर आते हैं तब वो जागृत अवस्था आती है, तब ये सारा ज्ञान भी हम समझ सकते हैं जब शरीर मिले, लेकिन परम धाम में तो कुछ भी अनुभव नहीं है। पर उसका अनुभव हम यहाँ कर सकते हैं जब हमें ज्ञान बाबा देते हैं। तो उस घर से हम आए हैं ये भी कहाँ याद है। अब जब हम कहते हैं ना परम धाम चले जाओ, परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप अपने आप को समझो, बाबा के सामने उपस्थित हूँ ये देखो, तो कई कहते परम धाम को कैसे हम विजुअलाइज कर, हमने तो देखा नहीं है। तो अभी ये कैसे हम कह सकते देखा नहीं है, भाई वहां से ही तो आए हैं, वहां से ही आए हैं तो देखा तो होगा ना, जहां से आप आते हो तो वहां तो देखेंगे तभी तो आएंगे ना वहां से। लेकिन क्यों कहते हमने देखा नहीं है, क्योंकि याद नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गांव में पैदा हुआ मानो, अब वहां का वो उनका जन्म का फोटो वोटो सब माँ के पास है एल्बम में, और जब 5-6 साल का होता है तो ये समझ आती है तो उसको माँ फोटो दिखाती है एल्बम, देखो बेटा तुम यहाँ इस गांव में पैदा हुए थे। तो कहते मैंने तो देखा नहीं है, हाँ, क्योंकि उसको याद थोड़ी है। तो वो कहेगा मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर माँ उसको कहती है बेटा तुम यहीं पैदा हुए थे, हाँ, मैं आपकी माँ हूँ तो मैंने ही पैदा किया था। जब माँ जब कहती है तब वो मानेगा, नहीं तो कहेगा मैं तो देखा ही नहीं। तो भगवान खुद आकर के कहते हैं कि तुम उसी धाम के वासी थे। तो कोई कहे कि मैंने देखा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। हाँ देखा है पर भूल गए, इसलिए कल की मुरली क्या थी, स्मृति। तो बाबा आकर के हर चीज की स्मृति दिलाते हैं और सारा ज्ञान का सारी स्मृति है। फिर जब बाबा कहते 5 स्वरूपों को स्मृति में लाओ तो सतयुग में कैसे होंगे, चलो परम धाम का तो बाबा बताते हैं, फिर सतयुग में कैसे होंगे, कैसे वहां पर सुख शांति संपन्न जीवन होगा, कैसे सर्वगुण संपन्न होंगे, तो बाबा कहते उसको भी याद करो, क्या हमारा स्वरूप होगा उस सतयुगी दुनिया में। पर कोई कि हमने तो सतयुग देखा नहीं, अरे भाई कैसे नहीं देखा, वहीं से तो आए हो, हाँ सतयुग से ही तो नीचे उतरे हो, पर हमने नहीं देखा, बस ऐसे ही कह देंगे, हम कैसे विजुअलाइज करें, कैसे हम संकल्पना करें। तो बाबा कहते वही तो स्मृति दिला रहे हैं, आपको स्मृति नहीं है इसीलिए तो बाबा स्मृति दिला रहे कि तुम तो सतयुग के मालिक थे, तुम तो विश्व के मालिक थे, हाँ सारी विश्व पर तुम्हारा राज्य था, ये सब स्मृति है। तो ये 5 स्वरूपों की जो स्मृति है, इससे भी जैसे वो स्मृति हमारी जागृत होती है तो पता चलता कि हम आत्माएं कितनी ऊंच है। तो न परम धाम में पता होगा और न सतयुग में ही पता होगा कि हम इतनी ऊंच है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट तो है ही नहीं ना, जहाँ कॉन्ट्रास्ट होता है वहां पता चलता है कि हम ऊंचे हैं। अब कोई धनवान भी हो और निर्धन भी हो तो निर्धन कैसा होगा और धनवान कैसा होगा, तो धनवान कंट्रास्ट कर सकता है ना कि मैं धनवान हूं और ये निर्धन है, पर सारे धनवान हो तो फिर कंट्रास्ट की तो बात ही नहीं है, तो फिर उसको भी नहीं लगेगा कि मैं धनवान हूं क्योंकि सारे धनवान है। तो मिसाल देते हैं ना कि सब एक जगह एक व्यक्ति गया तो उस गांव में सब काने रहते थे ना, एक आंख वाले ही रहते थे। तो जब वो गया तो 2 आंख वाला, तो लोग उनको देखने लगे ये 2 आंख वाला कहाँ से आ गया, क्योंकि हम तो सब एक कान वाले एक आंख वाले ही हैं। तो उनको पता ही नहीं कि 2 आंखें भी होती है क्योंकि सारे एक आंख वाले, कंट्रास्ट तो पता नहीं ना। परंतु जब 2 आंख वाला गया तो उनको लगा अच्छा ये दूसरी आंख उसके लिए ही है, तो पता ही नहीं चला। तो जब तक अंतर न हो तब तक हमारी स्थिति क्या है वो हमें पता नहीं चलती है, इसलिए सतयुग में तो पता ही नहीं होगा। जो बाबा कहते सत्य के बाद त्रेता आएगा वो पता नहीं होगा, वो तो ठीक है नहीं पता होगा, लेकिन सतयुग में हम हैं, ये स्वर्णिम युग है, ये हम देवताएं हैं, हम इतने श्रेष्ठ हैं, ये भी कहां पता चलेगा, क्योंकि कोई भ्रष्ट तो है ही नहीं जो कंट्रास्ट हो। जहां पर कंट्रास्ट है वहां पता चलता है कि हम कहां तक है। फिर बाबा कहते द्वापुर में आते हैं तो पूज्य स्वरूप है, अब पूज्य स्वरूप का भी हमको कहां पता चलेगा कि हमारा ये पूज्य स्वरूप है, द्वापुर से हमारी पूजा होती आई है, हमें क्या पता चलेगा, और ये हम ही हैं ये तो पता ही नहीं था। मंदिरों में जाते हैं देवताओं की पूजा करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण और हम नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा, चरणों की धूल मिट्टी मूरख निर्बल, कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं हम अपने लिए। वैसे कोई कह दे कि चल हम पापी कहीं का तो लड़ना चालू कर देंगे, पर खुद ही कहते हैं ना देवताओं के आगे कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम कपटी हैं, लेकिन हम ही ये थे ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ही आकर के ये स्मृति दिलाते हैं, और जैसे स्मृति आई कि जिन देवताओं की पूजा हो रही वो हम ही हैं तो कितनी खुशी होती है। पर जब तक स्मृति नहीं है तब तक तो ठीक है, इनकी पूजा कर रही है, हमारे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, यही समझते आए हैं। तो इसीलिए हम ही ये पूज्य थे और हमारी ही पूजा होती है ये तो पता नहीं था। और फिर बाबा कहते देखो पूजा भी कैसे होती है, आप इस समय जैसी आपकी स्थिति होगी उसी अनुसार आपकी पूजा भी होगी द्वापर में, द्वापर कलयुग में। पर अभी अगर हमारी श्रेष्ठ स्थिति है तो फिर वहां पूजा भी इतनी श्रेष्ठ विधि से होगी। फिर देखो आओ संगम पर, अब संगम पर कुक वंशावली ब्राह्मण भी है, तो हम तो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, पर वो कुक वंशावली ब्राह्मण थोड़ी ये जानते हैं कि ब्रह्मा मुख से हम पैदा हुए, भले कह देते हैं लेकिन न ब्रह्मा को जानते हैं न ब्रह्मा मुख से कैसे पैदा होना होता है वो पता है, वो तो कुक वंशावली है। इसीलिए कंट्रास्ट न होने के कारण उनको जो स्थिति उनकी है वो स्थिति का भी उनको पता नहीं चलता। लेकिन अभी जो बाबा ने हमें स्मृति दी है, इस स्मृति के आधार से हम पांचों स्वरूपों को जब याद करते हैं तो कैसा नशा चढ़ता है, हम ही है ये। कई बार हम सुनाते हैं, कल भी बताया था, कल महात्मा गांधी का की पुण्यतिथि थी 30 जनवरी, तो पुण्यतिथि थी और उनके समाधि पर बहुत कुछ हुआ, बहुत ये भजन कीर्तन सब हुआ। अब महात्मा गांधी की भी तो आत्मा किसी जन्म में होगी ना, मान लो वो भी वहां पहुंच गई हो, वो आत्मा जो दूसरे जन्म में है और वो भी भजन गा रही है महात्मा गांधी के जो वैष्णव भजन ने कही है, माना जो पीर पढ़ाई जाने, या रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये गांधी जी गाते थे तो वो भी गाने लगेगा, पर वो समझेगा क्या कि ये मैं ही वो आत्मा हूं, पता है क्या। तो इसीलिए जो भी बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं उस स्मृति को हम बुद्धि में रिवाइज करके नशा चढ़ा रहे, और जितना ये नशा चढ़ता जाएगा बाबा कहते बाकी दुनियावी नशे सब खत्म होते जाएंगे। इसलिए सब नशों में नुकसान, ये एक ही नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, संगम युग का बेहद का नशा, ज्ञान का नशा। हम कौन हमारा कौन, दादी जानकी जी कितने नशे से कहती थी, 3 बार ओम शांति कह के फिर जोर से कहती थी हम कौन हमारा कौन हा? नशे की बात, भले शरीर में ताकत नहीं थी लेकिन वो ओम शांति की ताकत तो दादी की कितनी बढ़ जाती थी। तो ये जो हम बच्चों को बाबा ने स्मृति दी है वो वो स्मृति सदाई बुद्धि में हो और फिर उसी का स्वरूप बन जाओ, हम ही ये थे, हम ही हैं। तो ये संगम युगी जीवन कितना दुर्लभ है हमारा, इसलिए बाबा कहते इसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब इसकी वैल्यू का हम पूरा समझेंगे, वैल्यू को, और फिर लक्ष्य हमारे सामने है कि हमको क्या बनना है। इसलिए बाबा ये भी कंट्रास्ट करते हैं, और सत्संगों में लक्ष्य तो कुछ है नहीं, बस भजन कीर्तन गाएंगे या कथा वार्ता करेंगे, लेकिन क्या बनना है ये तो कोई लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तो बाबा ने पहले ही लक्ष्य दे दिया, ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण का, विष्णु का साक्षात्कार करा दिया, तुमको ये बनना है, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी यही हो। तो तुम भी यही हो, ये जो नशा चढ़ाया वो नशा तो बाबा का कभी कम नहीं हुआ, फिर तभी तो ये सब सेट छोड़ सका। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी अब अवस्था कैसी होनी चाहिए, परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था माना एकदम मैच्योर्ड अवस्था, अब बचपन के दिन नहीं है, वानप्रस्थ अवस्था आ गई है, अब घर जाने का समय हो गया है। तो वानप्रस्थ अवस्था में क्या करना होता है, याद रहता है बस अभी जाना है जाना है जाना है जाना है। तो वही वानप्रस्थ अवस्था को, मैच्योर्ड अवस्था को, परिपक्व अवस्था को, ये अब हम बच्चों को लानी होगी। यहाँ वहाँ बुद्धि न जाए, दृष्टि वृत्ति जो बाबा ने कल भी कहा, स्मृति से कहाँ तक पहुँचते हैं हम, स्थिति तक पहुँचते हैं। तो स्मृति से स्थिति कैसे बनती है, उसके स्मृति के आधार से वृत्ति बनती है, फिर दृष्टि बनती है, या दृष्टि फिर वृत्ति बनती है, फिर कृति बनती है, फिर स्थिति बनती है। तो जब स्मृति इतनी ऊंची होगी तो स्थिति सहज आ सकती है, क्योंकि वृत्ति ऐसी बन जाएगी बाबा ने हमको क्या दिया है। तो किसको कहेंगे परिपक्व अवस्था, जैसे फल होता है, अब पेड़ पर लटक रहा है पर कच्चा फल है, तो कच्चा फल कैसा होता है, कड़वा भी होता है या खट्टा भी होता है, हाँ, या तीखा भी होता है, मतलब न खाने योग्य तो नहीं होता है ना। खाने योग्य तब हो जब वो परिपक्व हो जाए या पक जाए। तो कच्चा फल माना वो कोई काम का नहीं है, योग्य नहीं है। चलो आम है कच्चा है, अचार डाल देंगे, लेकिन खाने योग्य तो ऐसे नहीं होगा ना, भगवान के आगे अर्पित तो नहीं कर सकेंगे ना कच्चा फल। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को अभी कहते, बच्चे तुम्हें परिपक्व बनना है। परिपक्व माना पक्का फल। तो पक्का फल कैसे बनेंगे, पक्का बनने के लिए पहले तो धीरज बहुत चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। बाबा धीरज भी देते हैं, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो जब धीरज हम आत्माओं को मिल जाता है तो हमारी अवस्था स्थिर हो जाती है। जैसे कोई पेशेंट है, डॉक्टर उसको धीरज देता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो जल्दी ठीक हो जाओगे ये जैसे ही धीरज मिला, वो जो पेशेंट है उसको पेशेंस मिल जाती है। तो हम बच्चों को भी अभी उसी पेशेंट स्थिति में, माना मरीज की स्थिति नहीं लेकिन पेशेंस की स्थिति में, धीरज की स्थिति में भी आना, ये भी मैच्योर स्टेज है। लेकिन कई बार जब मन में प्रश्न उठते हैं, ये क्यों, ये क्या, ये कौन, ये कहाँ, ये कैसे, ये जो मन में जो तूफान आ जाते हैं, ये तो परिपक्व अवस्था नहीं है ना। परिपक्व अवस्था माना कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि या तो प्रश्न उत्पन्न होंगे या तो आश्चर्य खाएंगे, अच्छा ऐसे भी होता है क्या, पर परिपक्व अवस्था में आश्चर्य भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अनुभवी मुहूर्त है। जिस व्यक्ति के लिए कोई नई बात होती है तो अच्छा हाँ सरप्राइज दिखाएगा, आश्चर्य दिखाएगा, पर जो अनुभवी मुहूर्त है, जिसने अपने जीवन में सब कुछ अनुभव कर लिया है, वो आश्चर्य भी नहीं खाएगा, क्योंकि बहुत बार किया है। और बाबा ने तो हमें कैसे ड्रामा का ज्ञान दे करके बिल्कुल निश्चिंत कर दिया है, बच्चे जो कुछ भी होता है कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, न कोई नई बात है और न ही कोई बुरी बात है, न ही कोई गलत बात है। इस ड्रामा में सब कुछ सही है, सब कुछ कल्याणकारी है और सब कुछ पहले हो चुका है। तो इसलिए जब ये बुद्धि में आ जाता है तो हमारे अंदर की हलचल खत्म हो जाती है, स्थिर बुद्धि बन जाती है। तो परिपक्व स्थिति माना एकदम स्थिर, एकदम एक रस, न कोई प्रश्न, न कोई आश्चर्य और न कोई चिंता। चिंता तो उनको होती है जो समझते हैं अभी तो बहुत जीना है, अभी तो मुझे अपने लिए भी चाहिए, बच्चों के लिए, पोतरों के लिए, परपोतरों के लिए, वह कल भी बाबा ने कहा इतनी पीढ़ियों के लिए चाहिए। वो जोक बताते ना कि एक बहुत धनवान व्यक्ति था, तो धनवान व्यक्ति ने अपने मुनीम से पूछा कि जरा बताओ तो हमारे तिजोरी में कितना धन है। तो मुनीम जी ने कहा कि साहब आप क्यों चिंता करते हो, आपके पास तो बहुत धन है, इतना धन है, इतना धन है जो आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती है। तो उसने कहा 7 पीढ़ियां, फिर चिंता आ गई, भाई क्या बात है 7 पीढ़ियां खा सकती, चिंता किस बात की। तो कहा फिर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मतलब चिंता, हर बात में चिंता करना। हम ये भी कई बार सुनाते हैं कि जिस दिन समझो जिसको चिंता करने की बहुत आदत होती है ना, अब एक दिन सवेरे उठा कोई चिंता नहीं, कुछ भी याद नहीं है, कोई बोझ नहीं, तो उसकी भी चिंता हो जाती है, आज चिंता क्यों नहीं है, आज चिंता क्यों नहीं है मुझे, नहीं तो रोज सवेरे उठता हूं तो ये चिंता वो चिंता उसकी चिंता उसकी चिंता, आज कोई चिंता ही नहीं है, मैं ठीक हूं ना, नॉर्मल हूं ना, क्योंकि चिंता करना नॉर्मल हो गया है, चिंता करना नॉर्मल हो गया है। तो जो चीज नॉर्मल हो गई है वो है अबनॉर्मल, क्यों चिंता होनी चाहिए, परंतु वो नॉर्मल हो गया है। और तो चिंता करना नॉर्मल और न चिंता करना ये अबनॉर्मल हो गया, ये जैसे सही बैठता नहीं है। हर्षित रहना ये नॉर्मल होना चाहिए, शांत रहना ये नॉर्मल होना चाहिए, यही स्थिति होनी चाहिए, लेकिन अशांत हो जाते हैं और समझते अभी मैं ठीक हूं, अशांत हूं, क्योंकि यही मेरी स्थिति है। तो जो आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है उनको भी हम भूल गए, इसलिए परिपक्व अवस्था माना वो आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में वापस आ जाए, परिपक्व अवस्था उसको कहेंगे, मैच्योर्ड अवस्था उसको कहेंगे, अपने अंतर्मुखी स्थिति में रहे। आधा कल्प तो अब कितना बाह्यमुखी रहे, इसीलिए सब कुछ इंद्रियां उत्तेजित ही रही। अब बाबा कहते इंद्रियों को समेट लो, बस जो कुछ होता है अच्छा है। तो इसीलिए न प्रश्न करना है, न आश्चर्य खाना है और न कोई चिंता करनी है और न डरना है। कल बाबा ने बताया आत्मा के ज्ञान से क्या हो गया, एकदम परिवर्तन आ गया। आत्मा का ज्ञान नहीं था तो मनुष्य कितना डरते रहे, हाय मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं। कई लोग तो सारा दिन मुंह से ही निकालते, हाय मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं, हाय मर गई, हाय मर गई, सारा दिन हाय मर गई यही निकालते हैं मुंह से। पर ये भी कितना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो या तो ये डर लगेगा मर न जाऊं, मर न जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा डर अगर है जीवन में तो वो मृत्यु का डर है, सबसे बड़ा डर। कईयों से पूछते हैं ना, आपको सबसे जास्ती डर किस बात का लगता है? तो कोई कहते अंधेरे का डर लगता है, सांप का डर लगता है, किसी को तो कॉकरोच का भी डर लगता है जरा सा कॉकरोच, ओए कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, हाँ ऐसे डरने लगते हैं। अरे कॉकरोच क्या करेगा, एक बहन थी कॉकरोच का, कॉकरोच से डरती थी, तो कॉकरोच आ गया नजदीक तो बहुत डरने लगी। मैंने कहा डरती क्यों, ये काटेगा थोड़ी, ये सांप थोड़ी है जो आपको काटेगा। कहते नहीं गंदा है ना, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, गंदा है। अच्छा गंदा है तो ठीक है, क्या तो डरती क्यों? तो डर, हर बात में डर, सब हर कदम कदम पर डर। तो ये डर तो आत्मा को बहुत निर्बल बनाता है। जरा सी आवाज हुई तब डर। तो बाबा कहते जब अगर छोटी छोटी बातों में डरते हो तो अंत कैसे देखेंगे, देख सकेंगे? इतने सारे बम फटेंगे, क्या क्या होगा, बंदूकें चलेगी, हाँ न जाने क्या क्या होगा। और उस समय डर गए तो बाबा ने उस दिन भी कहा ना कि कोई बीमारी से नहीं मरेंगे लेकिन डर से हार्ट फेल हो जाता है, डर डर। वो बताया किसी का कि कहाँ वो ये एक्सीडेंट हुआ, वो मालगाड़ी, ऐसे मालगाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी, तो एक बोगी दूसरे पर चढ़ गई, इतना जोर से धमाका हुआ। तो जो लोग उसमें मरे वो कोई चोट से नहीं मरे लेकिन हार्ट फेल से मर गए, हार्ट फेल, क्योंकि इतना जोर से धमाका होगा, अब उसमें ही मर गए। तो आप सोचो कि अगर डर गए तो उस समय हार्ट फेल हुआ और ओम शांति, तो इसका मतलब आत्मा कितनी कमजोर है, कितनी कमजोर है। तो उसके लिए बाबा हमको क्या प्रैक्टिस कराते हैं, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। तो जब ऐसे आवाज भी हुई तो अशरीरी में बन सकती हूं, अपने आप से पूछिए। अशरीरी न्यारी, एकदम न्यारी बन जाऊं। मैं अपना अनुभव कई बार सुनाती हूं कि बहुत साल हो गए, मैं समझती हूँ 30-35 साल हो गए होंगे, एक्सीडेंट हुआ हमारा, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था, लेकिन कैसे बच गए, बाबा ने बचा दिया। हम पालनपुर से वापस आ रहे थे मधुबन, तब ये हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल तो बाद में बना, ये 80s की बात होगी, हॉस्पिटल तो 90 में बना। तो हर बात के लिए हमको पालनपुर जाना पड़ता था, छोटे से दांत के दर्द के लिए, आंखों का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, कुछ भी, सबके लिए पालनपुर जाना पड़ता था। तो पालनपुर हम लोग गए थे, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा बज रहा है। तो पालनपुर से हम वापस आ रहे थे, चलो कोई बात नहीं, पालनपुर से हम वापस आ रहे थे तो अचानक एक व्यक्ति, माना वो युगल थे, ट्राइबल लोग ना, जो ये भील लोग, तो भील लोग जो जंगल से लकड़ी काट के आ रहे थे, तो जो पुरुष था उसके सिर पर लकड़ियों का बंडल था और अचानक पहुंच गया। हम तो आराम से जा रहे थे, रास्ता तो साफ था, लेकिन अचानक पहुंच गया, पहुंच गए और वो बिल्कुल जैसे गाड़ी के नजदीक आ गए। तो हमारा जो रथवान था, ड्राइवर था, उसने जोर से ब्रेक लगाई, जोर से ब्रेक लगाई, बहुत जोर से आवाज आई और फिर एक्सल, फिर वो व्हील घुमाई। अब पता नहीं एक्सल टूट गई, क्या उस समय हो गया। और तो क्या हुआ कि वो गाड़ी मना टर्न किया, परंतु उसके पैर को लग गया, और जैसे पैर को लगा उसके सिर पर जो लकड़ियों का बंडल था वो उछल करके हमारी गाड़ी के ऊपर लगा, तो वो जैसे चूर 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 हो जाते ना वो विंडो स्क्रीन। अब और ये गाड़ी को उस समय टेढ़ी किया, मतलब टर्न किया, तो एक्सल टूट गया, आप क्या पता नहीं उनका व्हील टूट गया, लेकिन घूम के गई। और अभी अंध घूम था, तो जब वो ऐसी घूमी, अब वहां पर पिलर था तो पिलर को भी लग सकती थी, वहां पर खाई थी, खाई को भी लग सकती, खाई में जा सकती थी, तो मानो सबका अंत समझो खत्म। अब परंतु उस समय मुझे याद है मैं पीछे बैठी थी, साइड में बैठी थी, और दो बहनें और मेरे साथ बैठी थी, वो भी पालनपुर से आ रही थी, तो जो बीच में बैठी थी वो थोड़ी दुबली पतली थी, और जो मेरे उस तरफ बैठी थी साइड में वो तो बहुत मोटी थी। तो क्या हुआ, तो जैसे घुमाया तो वो जो छोटी पतली थी वो तो सीट के नीचे ही चली गई और मैं थी, मैं तो कोने में आ गई, और वो मोटी जो थी वो मेरे ऊपर गिरी। लेकिन उस समय मुझे याद है मैंने उस समय बाबा को कहा, बाबा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, हाय 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 ये नहीं कहा, मैं आ रही हूँ। और एकदम ऐसे अशरीरी हो गई जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई, इसे अनुभव हुआ, बस आंखें बंद कर दी मैंने। और फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो जिंदा है हूँ और वो जो गाड़ी थी वो जाके झाड़ियों में सो गई, मतलब ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई झाड़ियों में, तो झाड़ियां थी वहां। और सोचो न वो कोई खंबा था न खाई थी, क्योंकि पता थोड़ी चलता है उस समय, थोड़ी ये सब देखते हैं, तो वो झाड़ियों में जाकर के वो लेट गई, और हम उसमें ऐसे लुढ़क करके, मतलब एक ही बार वो ऐसे गिरे, और शीशा चूर चूर हो गया। पर वो शीशा ऐसा होता है गाड़ी का जो आगे का स्क्रीन होता है ना, वो अगर टूटेगा भी ना तो वो ऐसे जैसे बारिश होती ना वैसे रोट गिरता है, वो किसी को लगता नहीं है, वो बस ऐसे ही नहीं। हाँ क्या, हाँ हाँ वो तो इसीलिए किसको लगता नहीं है। तो क्या हुआ कि अब उस समय हमने कहा बाबा थैंक यू बाबा, बस पहले तो कहा बाबा हम आ रहे हैं आपके पास, और एकदम अशरीरी हो गए। और फिर मैंने कहा बाबा हम देखा कि हम तो जिंदा है, और कुछ भी खरोच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप सोचो कुछ नहीं हुआ ड्रामा अनुसार। तो नेक्स्ट डे अव्यक्त बाप दादा को आना था, तो हम पांच जने थे, तो बाबा के सामने हम बैठे, तो बाबा ने अभी वो जो व्यक्ति था जिसके पैर में लगा उसका तो वहीं फ्रैक्चर हो गया, माना पांव को लगा वो गिर गया, और वो उसकी स्त्री तो रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी। परंतु अभी हमारे पास तो पालनपुर का सेंटर नजदीक था, वहाँ फोन किया, फिर उनको तो ले गए हॉस्पिटल, वहाँ ले गए तो मतलब वो फिर बाद में पता नहीं। लेकिन कहने का भाव है कि जो बाबा कहते हैं ना ये अभ्यास करो अशरीरी बनने का, उस समय और कोई याद ना आए। कल की बाबा की मुरली कितनी जबरदस्त थी, अंत में एक ही पेपर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, एक ही क्वेश्चन। हाँ वो बाबा ने मुझे तो क्या, हम सब पांचों ही बाबा के पास आए, तो बाबा ने हम पांचों को दृष्टि दी, मतलब कुछ भी लगा तो नहीं, तो बाबा ने कहा कि आप सबका जो हिसाब किताब था उस वो जो ये जो जिसको चोट लगी ना उसके साथ जाके उसको लगा, आप सबका हिसाब किताब उसको जाके लगा, ये बाबा ने कहा इस प्रकार से। और बाबा ने ना बाबा ने जैसे रक्षा की, पर वो हिसाब किताब कुछ तो था ना, भले सूली से कांटा हो गया लेकिन वो हिसाब किताब उसको जाके लगा। और फिर बाद में सुना उनको हॉस्पिटल ले गए, वहां पर उसको सिर की भी चोट आई, ट्राइबल लोग थे ये भील लोग, और फिर तो कोई ने कहा कि वो मर भी गया पता नहीं, पर हम लोगों को तो बाद में कुछ पता नहीं चला। पर उसकी जो औरत थी वो तो चिल्लाई 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 उस समय, पर आप सोचो कैसी स्थिति होगी। अब हम यहाँ रास्ते में और शाम का समय था, ठंड भी थी, तो भी फिर फोन किया मधुबन में, फिर दूसरी गाड़ी आई या पता नहीं क्या कितना, पर बहुत साल पहले की बात है। लेकिन कहने का भाव है कि स्थिति हमारी कैसी थी। तो बाबा ने तो बहुत प्यार दिया, बाबा ने कहा कि अभी आपको तो बहुत सेवा करनी है, तो सेवा तो करनी है, इसीलिए बाबा ने रक्षा की और अपनी जैसे गोद में ले लिया। पर वो हिसाब किताब तो कुछ तो था ना, तो वो सुली से कांटा होकर के उस व्यक्ति को जाके लगा। फिर पता चला कि वो जो औरत थी उसने तो जाके दूसरी शादी भी कर ली, उसका तो जीवन ही बदल गया, और हो सकता ये मर भी गया हो जैसे सुन रहे थे बाद में, लेकिन फिर हम तो फिर उसमें गए नहीं। लेकिन कहने का भाव है कि ये सब होता है, पर हमारी स्थिति कैसी हो, बिल्कुल न्यारी, बिल्कुल न्यारी। कैसे अशरीरी बन जाएं हम, कि कुछ भी हो सकता है, तो न डर हो और न कोई चिंता हो, न कोई दुख भी हो, क्योंकि जो कुछ होता है सब कल्याणकारी, सब कल्याणकारी। उसी कल्याण की स्थिति में हमको अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। इसलिए बाबा ने ड्रामा का इतना ऊंचा ज्ञान हमें दिया है, तो उस ज्ञान के आधार से हमारी बहुत परिपक्व अवस्था हो सकती है, बिल्कुल स्थिर एक रस अवस्था हो। चलो चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जो बाबा कहते हैं अभिमान होगा तो अपमान महसूस होगा, अगर अपमान महसूस हो रहा है माना अभिमान है, और जहां अभिमान है वहां स्वमान नहीं है। इसलिए बाबा हमें स्वमानों की लिस्ट देते हैं, बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं हम अपने आप को उसी नजर से देखें, बस ये सदा उसी अपनी बुद्धि में रहे। बाबा जो हमें वरदान देते हैं वो वरदान मेरे लिए है ये हम अनुभव करें, ये नहीं कि ये वरदान तो बाबा ने जनरल में दिया, तो ये मेरे लिए है। कई बार हम ये सोचते बाबा की मुरली चली ठीक है, पर ये मेरे लिए थी, ये अगर बुद्धि में आएगा तो हम उस पर अटेंशन भी देंगे। कोई बात किसी ने मुझे कही तो वो तो छप गई, ऐसे जनरल में कही तो वो तो भूल जाएगी, पर मुझे कही तो वो बात छप जाएगी। तो ये मुरली क्यों भूल जाती, क्योंकि छपती नहीं है अंदर। हम समझते बाबा ने तो सबके लिए कही ना, मेरे लिए अकेले के लिए थोड़ी। तो इसीलिए परिपक्व अवस्था किसको कहेंगे, जब सब तरफ से बुद्धि योग हटा हुआ है। इसीलिए बाबा बहुत अच्छा मिसाल देते हैं परिपक्व स्थिति का, हलवे का मिसाल। हलवा जब पकाते हैं तो क्या होता है, पहले तो कच्चा होता है ना, आटा कच्चा होता है, फिर घी डाला शक्कर डाला जो भी, सब कितना भारी होता है, परंतु उसको जैसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, रंग भी बदलता रहता है और सब कुछ बदलता रहता है, और जब वो पकने पर होता है तो क्या होता है, भारीपन खत्म, एकदम हल्का हो गया। फिर जो कढ़ाई को लगता है आटा, वो कढ़ाई को लगा हुआ आटा भी सब निकल आता है, सब निकल जाता है। फिर जो अंदर में ज्यादा घी है वो भी निकल जाता है, और हलवा कैसा बन जाता है, इतना हल्का, वो बोझ खत्म, भारीपन खत्म, फिर मेहनत खत्म, बिल्कुल हल्का हो गया, और खाने में भी टेस्टी, मिठास मिल गई उसको, और वैसे खाओ तो कैसे लगेगा। तो परिपक्व अवस्था माना जैसे सब तरफ से हम न्यारे हो गए, कहीं भी दृष्टि नहीं जाती है, कहीं भी आकर्षण नहीं जाए, अपनी देह में भी आकर्षण नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा यही स्थान सबसे पवित्र स्थान है, ब्रिकुटी, ये मस्तक। कल मुझे किसी ने विदेश से फोन किया और कहा कि बाबा ने जो आज की मुरली के लिए, तो बाबा ने कहा ये सबसे पवित्र स्थान कैसे है, भ्रकुटी सबसे पवित्र स्थान कैसे है, और कोई स्थान शरीर में पवित्र नहीं है, मस्तक ही पवित्र है। अब इसका क्या उत्तर देंगे? तो हमने कहा देखो मस्तक ही है जो सबका एक जैसा है, मस्तक ही है जो सबका एक जैसा है ना, ये एकदम चपटा अभी और दूसरा आप जैसे नीचे जाएंगे सब में परिवर्तन है। अब किसकी आंखें कैसे होती है, झुंझार आंखें होती है, किसकी इतनी बड़ी आंखें होती है, किसकी बिल्ली की आंखें होती है, कई प्रकार की आंखें होती है, कई की किसी की बादामी आंखें होती है, बादाम जैसी आंखें होती है, तो अंतर है, सब में का अंतर है। अच्छा और नीचे तो नाक देखो, किसी का मोटा है, किसका पतला है, कैसा कैसा नाक होता है, टेढ़ा है, कई चीजें होती है। फिर और नीचे आओ तो ये होंठ है, किसके इतने मोटे मोटे होंठ होते हैं ना, किसके एकदम पेंसिल जैसे होंठ होते हैं। अब कोई उसको ही देखता रहे, फिर और नीचे आओ तो फिर रजो स्थिति तमो स्थिति सारी होती है, पर चेहरे में सबसे ऊंचा स्थान ये मस्तक है, और आत्मा का स्थान तो वही है। आज बाबा ने कहा चलो मस्तक नहीं तो आंखें, आज की मुरली पढ़ी आप लोगों ने, आज तो थे ना आप लोग, तो मस्तक में तो चलो आंखें कहां तो है ना, पर सबसे पवित्र स्थान तो यही है। आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र सब इसी को कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते किसको भी देखो तो कहां देखो, बस वहीं देखो, यही सबसे पवित्र स्थान है, तो आपकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। और ऐसी पवित्रता अगर अंदर में आ गई मानो कि आपकी परिपक्व अवस्था हो गई। इसलिए न व्यक्ति न वस्तु न वैभव न कोई घटना न कोई परिस्थिति उसमें हमारा मन विचलित हो। कई कहते हैं ना मन में बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, अब व्यर्थ संकल्प भी कौन से आते होंगे जिसको आप व्यर्थ कहते हो, आवश्यक संकल्प तो आएंगे लेकिन व्यर्थ किसके, क्या क्या संकल्प आते हैं जो जिसको व्यर्थ कहते हैं? या तो व्यक्तियों के संकल्प आएंगे, व्यक्तियों के ही आते हैं ना संकल्प, किसके बारे में आते हैं, या तो कोई वस्तुओं के बारे में संकल्प आएंगे, या तो कोई घटना के बारे में संकल्प आएंगे, कोई घटना घटी उसके संकल्प चलेंगे, या तो किसी स्थान के बारे में आएंगे संकल्प, या तो इच्छाएं जो है मन में उसके संकल्प आएंगे, ये सब व्यर्थ के खाते में तो जाएंगे। परंतु जब परिपक्व अवस्था है तो सबसे पहले मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, पर ये कोई इच्छा नहीं है ये भी संकल्प तब आएगा जब अंदर में भरपूर स्थिति होगी। बाबा ने जो हमें दिया है उसी भरपूर स्थिति में हम रहेंगे। बाबा ने जो दिया है वो कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है, तो हम किसके आगे भीख क्यों मांगे, किसके आगे कोई इच्छा प्रकट क्यों करें? और अगर कुछ है भी तो बाबा को कहो, बस बाबा से बातें करो, बाबा से पूछो, बाबा से राय लो। कोई भी छोटी मोटी कोई बात है तो बाबा को कहो। एक हंसी की बात आपको सुना, एक माता आई अपने दो उसके बच्चे थे तो दो बच्चों को लेकर के आई, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि आपके और भी बच्चे हैं, तो कहती है हाँ तो शिव बाबा है। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया तो कहा हाँ शिव बाबा है, तो मैंने कहा शिव बाबा आपका छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है? तो पहले सोच में पड़ गई छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना उनको बड़ा बच्चा बनाओ, तो जैसा बड़ा होगा ना छोटे उसको देख के फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा, तो बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने। उसने कहा कि जब कोई मेरा कोई चीज गुम हो जाती है ना तो वो भी ढूंढती हूँ तो नहीं मिलती है, तो फिर मैं बच्चे को बुलाती हूँ, बेटा बताओ देखो कहाँ है मेरी चीज, तो वो बेटा माना शिव बाबा को बुलाती है छोटा, तो छोटी छोटा बच्चा है तो बच्चे को कहेगी ना बेटा देखो कहाँ है कहाँ है, और फट से वहीं रहता है, तो बच्चे ने दे दिया छोटे बच्चे ने। फिर मैंने कहा बड़ा बच्चा, तो कहा कि जब कोई राय लेनी होती है ना तो वो मेरा बड़ा बच्चा बन जाता है। तो राय लेनी है तो शिव बाबा को बड़ा बच्चा बना देते, और जब कोई ऐसा वैसा कोई छोटा मोटा काम है उनसे लेना है तो छोटा बच्चा बना देती हूँ। तो परंतु फिर हमने उनके बच्चों से पूछा कि आपको पसंद है शिव बाबा, आपका बड़ा भाई है या छोटा भाई है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम हमारा तो बड़ा भाई है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, तो फिर बड़े भाई का भी तो शेयर होना चाहिए ना, जो भी हिस्सा बच्चों को मिलता है तो बड़े को भी मिलना चाहिए, दो बच्चे हैं तो इसको भी। तो आपको एतराज तो नहीं है कि शिव बाबा को भी शेयर मिलता है जो आपको मिलता है? कहते नहीं, हमें तो बहुत खुशी है, शिव बाबा हमारा बड़ा भाई, हमारा रक्षक बन के हमको चला रहा है। तो देखा बच्चे भी इतने समझदार थे, और वो तो बड़ा ही अच्छी तरह बड़ा आनंद ये क्या है एंटरटेनिंग वे में कहा, उसको बड़ा बच्चा बना देती हूँ, कभी छोटा बच्चा बना देती हूँ। कई तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्योंकि अक्सर करके हम ये पूछते हैं, कईयों से पूछते हैं, तो कई समझते हैं कि नहीं हमको तो उनको छोटा बच्चा बनाना है, और कई समझते नहीं बड़ा बच्चा बनाना है। तो बड़ा बनाएंगे तभी वो छोटे उनको फॉलो करेंगे, हर बात में बच्चों को भी शिव बाबा को फॉलो कराना है। तो इसीलिए परिपक्व अवस्था किसको कहेंगे कि हर बात में बाबा, हर बात में बाबा, बाबा को बीच में रखो। इसलिए आपसी लेन देन में भी बीच में बाबा। तो इसलिए जब बाबा को बीच में रखा तो हमारी स्थिति अवश्य परिपक्व हो जाएगी, एक बाबा दूसरा ना कोई। इसलिए जब ये बुद्धि में आता है तो हम संपन्नता के भी नजदीक जा सकते हैं, संपूर्णता के भी नजदीक जा सकते हैं। हाँ, तो कई पूछते हैं संपन्नता और संपूर्णता में अंतर क्या है, संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे? तो एक लाइन में जवाब देंगे, सर्व गुणों में संपन्न और 16 कलाओं में संपूर्ण। अब इसका आप विस्तार कर सकते हैं, चंद्रमा की तरह सर्व गुणों में संपन्न और पवित्रता की 16 कलाओं में संपूर्ण, इसको कहेंगे संपन्न और संपूर्ण। तो जब ये स्थिति होगी तब बाबा कहते हैं फरिश्ता बनेंगे, घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। उसके पहले ये परिपूर्ण परिपक्व अवस्था हमारी बननी है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।